तो ईश्वर भक्ति में दृढ़ता के लिए एक साधारण सी बात समझना बहुत जरूरी है। हम संसार में जो कुछ भी कर्म करते हैं अपने ही स्वार्थ के लिए, परिवार पालन के लिए, हम उसमें बड़े सिंसियर होते हैं और जितनी भी हमारी सामर्थ्य है उसके यूज करके स्वार्थ कर्म पूरे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका महत्व हमको पता है कि इसके बिना जीवन चलेगा नहीं, संसार में बर्बाद हो जाएंगे, मारे जाएंगे यदि हमने इसमें लापरवाही की। इसीलिए चाहे हम स्टूडेंट रहे हों, चाहे हम बिजनेसमैन या सर्विसमैन रहे हों, नॉर्मल गृहस्थी रहे हों, लेकिन संसारी कर्मों को हम भले ही मजबूरी वश करें लेकिन करते हैं उसको, क्योंकि वहां आपको सीधा सीधा नुकसान नजर आता है, बर्बादी नजर आती है। ईश्वर मार्ग पर चलने के बारे में हमारे मन में ये बात नहीं रहती। संसार ठीक चलना चाहिए, वो सरकारी हमारे पूरे हो जाए जैसा हम चाहते हैं और उसमें से जो टाइम बचे तो ईश्वर में भी हम लगा देते हैं। यदि समझ है कुछ ईश्वर मार्ग की तो उसमें भी लगा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो हमारे अंदर जो दो चीजों को कंपेयर करें तो महत्व तो सांसारिक जीवन का रहता है, ईश्वर का उस कैटेगरी का महत्व तो हमारे दिमाग में होता ही नहीं। और इसीलिए हम अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं कि क्या करें, मजबूरियां हैं संसार की, ईश्वर मार्ग पर जैसा गुरु ने कहा है वैसा हम चल नहीं सकते या चल नहीं पाते। तो इसीलिए जब तक आपके अंदर सतमार्ग की समझ गहरी नहीं है या विवेक आपका स्ट्रांग नहीं है तब तक ये स्पिरिट आपके अंदर आ नहीं सकती। जब सतमार्ग की समझ आपको ठीक तरह से आती है उसके लिए आप सत्संग श्रवण करते हैं, सत्संगति करते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, तो उस पर मनन करते हैं, गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तो जब आपको उसकी समझ आती है तब आप बड़े बड़े सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग उतने तो बड़े सेक्रीफाइस इस काम के लिए कर लेते हैं। देखा नहीं आपने कि लोग सर्विस छोड़ देते हैं, कोई बिजनेस ही आधा कर देता है, कोई शादी ही नहीं करता, कहता है कि नहीं मैंने तो ईश्वर मार्ग पे चलना है, संसार के भोग विलास में मैंने नहीं फंसना। उसने विवेक है, विवेक स्ट्रांग है उसका, तो अपने आप को हर चीज से बचाकर वो चलने की कोशिश करता है और बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस भी करने से डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? क्योंकि पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईश्वर भक्ति है। तो हम क्योंकि हम अज्ञानता में फंसे हुए हैं, अपने बारे में ही हमारे अंदर रॉन्ग कल्पना है, इस संसार के बारे में भी एक गलत कल्पना लिए बैठे हुए हैं, कारणकर्ता मैं ही हूं, मेरे ही करने से सब कुछ होता है ये निश्चय कर हुए बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं आती सेक्रीफाइस करने की। लेकिन आप यदि वास्तव में विचार करो, मान लिया समता विलास है, ठीक है, हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक जो गुरु है, हमने महात्मा मंगतान जी को माना हुआ है और उन पर श्रद्धा है, तो इसलिए उनके शास्त्र पर भी श्रद्धा हमारी पूरी है कि भाई गुरु ने जो ज्ञान लिख कर दिया है ये तो मैंने समझना ही है, जैसा भी ज्ञान है वो, क्योंकि आपकी श्रद्धा है इसके ऊपर कि ये ट्रुथ है मेरे जीवन के बारे में। तो आप उस श्रद्धा को आगे रखकर इस संकल्प के साथ कि मेरे जीवन की ट्रुथ है ये, मेरे जीवन की सच्चाई है, मैं इसको टाल नहीं सकता, इसको ओवरलुक नहीं कर सकता, मैंने इसको सीखना ही है, क्योंकि ये मेरे बारे में ज्ञान है, प्रकृति के बारे में ज्ञान है, ईश्वर के बारे में ज्ञान है, ये तीन ही चीज तो है, मैं हूं, ये बाहर की प्रकृति है जिसको हम भले ही संसार कह लें और ईश्वर है, तो इन तीनों का विज्ञान इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर ये भी लिखा हुआ है कि मेरी मुसीबत क्या है, मेरा बंधन क्या है और उस बंधन से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूं, ये भी उसमें लिखा हुआ है। जन्म क्या है, मरण क्या है, ये भी उसमें लिखा हुआ है। तो मैं जब ईश्वर भक्ति करने बैठता हूं तो इस पूरे विज्ञान के प्रकाश में ईश्वर भक्ति करता हूं, तब आप ईश्वर भक्ति सही रूप में कर पाते हो। अभी मैं ईश्वर भक्ति तो कर रहा हूं, समझ मेरी संसारी, जैसे संसारी लोग सोचते हैं मैं वैसे ही सोच रहा हूं, मैं गुरु के अनुसार, समता विलास के मार्गदर्शन के अनुसार, सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार कहां सोच रहा हूं। लग रहा है मुझे ऐसा कि मैं कभी सत्संग चला जाता हूं, कभी सत्संग सुन लेता हूं, कभी कुछ पढ़ लेता हूं, कभी सिमरन कर लेता हूं, तो मैं समझता हूं कि मैं सतमार्ग का राही हूं। निश्चय ही पक्का नहीं है अंदर, सतमार्ग का राही कहां से होगा। तो ये फ्लिकरिंग आपका जो फेथ है ना, ये और किसी चीज का निश्चय नहीं है, किसी चीज की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए ये डावाडोल स्थिति आदमी की बनी रहती है, वो तरह तरह के बहाने ढूंढता रहता है, समझे नहीं, ये मजबूरी है, वो मजबूरी है, वो मजबूरी है, और ईश्वर मार्ग को स्लिप हो जाता है। ये स्थिति साफ साफ निर्णय कर रही है कि मेरे अंदर विवेक नहीं है, मेरे अंदर सतमार्ग की समझ नहीं है, मैंने केवल एक वहम पाल रखा है कि मैं समझता सब हूं, क्या करूं, मुसीबत मेरी बहुत बड़ी है, मेरा बंधन बहुत बड़ा है, मैं चल नहीं पाता। ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है, ये निर्णय वाली स्थिति है। अरे सत्पुरुष कह रहे हैं जब कि प्रभु के सिमरनकार ने ये दुर्लभ जीवन पाए, ये दुर्लभ मानव जन्म मुझको उस प्रभु सिमरन के लिए मिला है, मैं उसको बहाने बना के छोड़ देता हूं, क्या करूं, प्रभु ने मेरे आगे ऐसी मजबूरियां सारी पेश कर दी है कि मैं तो इस मार्ग पर चल ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये वाणी तेरे लिए होनी नहीं चाहिए थी, ये तो वाणी तो यूनिवर्सल है। अरे अर्जुन कितनी मुसीबत में, जरा विचार करके तो देखो, अर्जुन से ज्यादा बुरी स्थिति आपकी हो सकती है क्या। राजघराने में पैदा हुआ है, 12 वर्ष का वनवास मिल गया पांचों भाइयों को, दुर्योधन और पूरे खानदान की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, तो अर्जुन की स्थिति तो देखो प्रैक्टिकली कहां खड़ा हुआ है वो, उसके मुकाबले में मैं तो कितना बेटर हूं, लेकिन वो अर्जुन तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता, बात यह कि मैं सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता, मैं जैसा परिवार है, जैसी सच्ची है, जैसे मेरे संस्कार है, मैं चाहता हूं ऐसी सब बना रहे और साथ में ईश्वर मिल जाए। मेरी जो अप्रोच है वो इस तरह की है, मैं गुरु के प्रति ईमानदार नहीं हूं, ना शास्त्र के प्रति ईमानदार हूं, संसार का निश्चय मेरे अंदर वैसे ही दृढ़ बना हुआ है जैसा आम लोगों के अंदर होता है और उसी को मैं ठीक ठाक रखना चाहता हूं। ईश्वर भक्ति हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। आपका ईश्वर भक्ति के कारण, मान लिया जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा अनपढ़ रह जाए, आप ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चले इसलिए आपका बच्चा अनपढ़ रह जाए, تو آپ اس درد کو برداشت کر سکو گے کیا؟ آپ اس درد کو برداشت کر سکو گے؟ ساری دنیا یہ کہے گی تم نے پاگل پن کرا ہے. ارے پہلے پہلا کرتویہ تھا بچے کو پڑھانا, بعد میں کرتا ہے ایشور بھکتی, پہلے بچہ پڑھاتا. لیکن یدی آپ کو نے وویک ہے, کہو گے سب سے امپورٹنٹ کام تو ایشور بھکتی کا, اس کے لیے سنسار بھی میرا بگڑ جائے تو کوئی بات نہیں, وہ نہیں بگڑنا چاہیے. یدی وویک اسٹرانگ ہے تو آپ کی بدھی یہ نرنے کرے گی, سنسار بگڑ جائے کوئی بات نہیں, لیکن یہ راستہ میں نے طے کرنا ہی ہے, کیونکہ اس کے لیے یہ منشی جنم ایشور نے مجھے دیا ہے. کیونکہ آپ کے اندر وویک اسٹرانگ ہے, اسی لیے آپ نرنے یہ کرو گے. اور اس کے اوپر ستپرش لوگ, جتنے بھی ستپرش ہوئے ہیں وہ مہر لگا رہے ہیں, انہوں نے جیون میں کیا ہے, کر کے دکھایا ہے, انہوں نے جیون میں یہ کر کے دکھایا ہے. سوامی رام تیرتھ نے اپنے دونوں لڑکوں کی کہاں فکر کری؟ مہاراجا کے ٹیری نے پالا ان کو. تو سنساری لوگ تو یہ کبھی سویکار نہیں کریں گے اس بات کو, نہیں, لیکن جس کے اندر دڑھتا ہے, جو اس کو سمجھتا ہے, وہ کچھ اور سوچ رہا ہے. اور کیا کسی سمجھدار ویکتی نے, سمجھدار کا مطلب جس کے اندر یہ ستما کا وویک ہے, وہ کبھی رام تیر کی برائی کرتا ہے؟ کہیں ہم نے پڑھا ہے؟ یاد کرتے ہیں لوگ رام تیر, بڑا اچھا کام کیا اس سے پریرنا لیتے ہیں, جبکہ گرہست جیون میں یہ کرا اس نے. تو ہمارے اندر اسٹرینتھ ہی نہیں ہو, تیاگ کرنے کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. کبھی پرارتھ کا بہانہ بنا دیں گے, کوئی کوئی بہانہ بنا دیں گے, جسٹیفیکیشن اپنے لیے تیار کر لیں گے, اور وہی سانساری جیون میں ہم رچے پچے رہتے ہیں, پورا جنم ہمارا ایسے نکل جاتا ہے. میں کہاں سوچتا ہوں اس طرح سے؟ آپ نے کبھی گھر میں بیٹھ کے سوچا آپ نے, میں جیو ہوں, اس من اور اس دیہ اور اس سنسار کے بندھن میں ہوں میں؟ پورا کا پورا من, پوری کی پوری دیہ, پورا کا پورا سنسار, میں اس کے بندھن میں ہوں. رات دن میری دردشا ہو رہی ہے. بڑے بھاگ سے, بڑی ایشوری کرپا سے اب یہ منش جنم ملا ہے اس کام کو کرنے کے لیے. تو یہ جنم تو من دیہ سنسار کے بندھن سے مکت ہونے کے لیے ملا تھا نا. میں جیو ہوں, کہاں ہوش ہے مجھے بتاؤ. کبھی ایک بار بھی دن میں ہوش آتا ہے مجھے اس بات کا, میں کون ہوں؟ اور ان تینوں سے مکت کون ہے؟ من کے بندھن سے, تن کے بندھن سے, سنسار کے بندھن سے مکت کون ہے؟ وہ ایشور ہے, وہ جیون شکتی ہے. جو گرو بنایا ہے آپ نے, تو یہ گیان تو آپ نے ہونا ہی چاہیے. یہ تو بیسکس ہے ادھیاتم ودیا کے. ان تینوں سے مکت کون ہے؟ ایشور ہے. اور اس ایشور ستا کے کارن ہی یہ پرکرتی چکر بھی چل رہا ہے, جسے میری دیہ بھی شامل ہے. میرے کارن نہیں چل رہا ہے, اس ایشور ستا کے کارن یہ پرکرتی چکر چل رہا ہے. تو بتائیے, اس ستا کو میں چھوڑے بیٹھا ہوا ہوں جس کے کارن پورا پرکرتی کا چکر چل رہا ہے, اور میں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ میرے کارن چل رہا ہے, میں کارن کرتا بن گیا ہر چیز کا. تو کہاں سے ہمت لاؤ گے پھر آپ؟ آپ کا نرنے ہی جب غلط ہے تو ہمت کہاں سے لاؤ گے پھر آپ؟ ستپرشوں کے اندر جو ہمت نظر آتی ہے, وہ اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ ان کے اندر اس بات میں ڈاؤٹ نہیں ہوتا. جانتے ہیں 100% کہ جیسا پربھو نے لیلا رچ دی ہے سارا چکر ویسے ہی گھومے گا. اسی لیے میرا جو ہائیسٹ کرتویہ ہے, سروتم کرتویہ ہے مانو جنم کا ایشور پراپتی, میں نے ہائیسٹ اس کرتویہ کو پورا کرنا ہے. باقی کرتویہ سارے پیچھے آتے ہیں, یہ پرائم آپ کی ڈیوٹی ہے, سروتم کرتویہ. اس لیے مہاجی لکھ رہے ہیں سنت الاس میں, سب کرموں سے महाकर्म प्रभु उपासना ही है। ये लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे बताओ। सब कर्मों से महाकर्म प्रभु उपासना ही है। अब बताइए, गुरु तो ये लिख कर दे रहा है, और इस उपासना को छोड़ने के लिए मैं छोटे छोटे बहाने भी तलाश कर लेता हूँ। अरे क्या करें साहब, फैमिली के साथ हमको दिन भर में एक बार बैठने का मौका मिलता है, तो डिनर के टाइम पे हम सब लोग बैठ के खाना खाते हैं, इसलिए हमारा सिमरन रह जाता है। ये बहाना हम हाईएस्ट इंपॉर्टेंट कर्म को छोड़ने के लिए बना रहे हैं। अब बताओ, मैं इनाम का हकदार हूं ईश्वर के हाथों से या सजा का हकदार हूं? वो कहेगा तू किससे तुलना कर रहा है, उस सिमरन की कितनी वैल्यू, तुझे पता है इस बात का? तूने उसको सबके साथ मिलकर खाना खाने से कम जरूरी आइटम समझा तूने सिमरन को। तो ऐसे आदमी से आशा करो ईश्वर मार्ग पर चलेगा कभी संभव है उसका चलना? जो इस बहाने के लिए सिमरन मरना टाल रहा है, वो आदमी कभी ईश्वर भक्ति कर सकेगा जिंदगी में? इतना भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता? उसको होश कहाँ है? जो ऐसे ऐसे बहाने बनाएगा, उसको अपना होश है कोई? तो मदहोश है पूरी तरह से, देह बन के घूम रहा है। मैं जीव हूं ना ये होश है, मैं मेरा क्या बदन है ना ये होश है, और ईश्वर क्या है ना ये होश है। तो ऐसा मदहोश व्यक्ति फिर कहता है मैं चाहता हूं मैं ईश्वर भक्ति करूं, लेकिन गृहस्थ के बंधन बहुत है, मेरे जो है रोजगार के बंधन बहुत है, मैं क्या करूं, मैं कर नहीं पाता। वो कहता है मैं कर नहीं पाता, मैं क्या करूं? अब बताओ गुरु क्या बताएगा, तू क्या कर? यही कहेगा तो क्या करना सी? तो वही मोह वाला संसार है ना, उन्हीं की आदतें सीख ली है, उन्हीं के बहाने बना रहा है और उन्हीं के कारण गिरा रहा है। तो इसको कहां होश है कि ईश्वर भक्ति को इस जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? तो आप देखो तो सही अपनी करनी को, साफ पता लग जाएगा ना आपके अंदर ईश्वर निश्चय है, ना आप ईश्वर भक्ति ना होने के कारण जिंदगी की बर्बादी समझते हो। जिसके अंदर आत्मनिश्चय है और जिसके अंदर विवेक है, वो ईश्वर भक्ति ना होने के कारण जिंदगी की बर्बादी समझेगा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, नहीं तो बर्बादी कहां समझेगा? किसी के दो बच्चे हैं, दोनों मर गए, तो ये कहेगा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दो ही बच्चे थे, दोनों ही मर गए, अब मेरी जिंदगी का, जिंदगी जीने का पर्पज ही क्या रहा? तो यही कहेगा, मोहवादी आदमी तो यही कहता है ना। तो निश्चय हमारा संसार में खड़ा हुआ है, देह में खड़ा हुआ है, इसके भोगों में खड़ा हुआ है, बात हम ईश्वर की करते हैं। तो इसीलिए सत्पुरुष का विज्ञान यदि समझोगे ही नहीं आप बारीकी से, तब ये भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति विवेक के बल से ही होती है, और जब विवेक स्ट्रांग होता है तो आप त्याग करने को बड़े से बड़ा तैयार हो जाते हो, आप अपने वैराग्य भाव आ ही जाता है। क्या छोटे मोटे भोगों के लिए जीते रहना? जरा पिकनिक पे जाना है साहब 5 दिन की बीवी के साथ, इसलिए साहब हम एकांतवास नहीं कर सकते। अरे एकांतवास जैसी चीज, या प्रभु के लिए 5 दिन जीना था इसलिए छोड़ दिया कि मैंने पिकनिक बना ली है बीवी के साथ जाके 5 दिन? बीवी के पास तो अकल नहीं, तेरे पास तो अकल थी, तू कह सकता था चाहे कुछ हो जाए लेकिन एकांतवास मेरा बंद नहीं होगा, वो मैं करूंगा ही करूंगा, उसके बाद देखूंगा कहाँ टाइम निकाल सकता हूं मैं, फिर मैं पिकनिक के लिए टाइम निकालूंगा। लेकिन उसकी कॉस्ट, उसकी कीमत पर मैं ये काम नहीं करूंगा। यदि मेरे अंदर होश होता तो मैं तो यही निर्णय करता। एक बार मेरे साले की शादी की डेट पड़ गई, जगाधरी का सम्मेलन था, तो सबसे बड़ा साला था, पहली शादी थी, तो विचार आया कि भाई एक गृहस्थ जीवन में बड़ा जरूरी काम है और करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अध्यात्म मार्ग पे चलने के प्रति सिंसियरिटी भी थी। तो क्या हुआ कि मैं जगाधरी सम्मेलन में आ गया, बुध शुक्र शनिवार इतवार को होता है, तो शुक्रवार अटेंड किया, शनिवार का सुबह का अटेंड किया। उसके बाद मैं वहां से ससुराल चला गया शादी के लिए। तो जिस समय मैं पहुंचा उस समय घोड़चले की जो कार्रवाई होती है वो हो रही थी, तो सारे रिश्तेदार जो कहने लगे कैसे जीजा हो, ये रस्म तो जीजा खुद ही करता है, जो रिवाज है गृहस्थ जीवन का, तुम अब आ रहे हो, सुन ली सबको, भाई सबने जो कहना था कह लिया, फिर चुप हो गए। तो अंदर हम जानते हैं कि मेरी जगह दूसरा होता तो वो उस शादी में समय से शामिल होता, लेकिन यहां कोई दृढ़ता अंदर दूसरी थी, तो गुरु घर का काम जरूरी समझा और वहां काम चला लिया। एक साधारण सी बात है, मैं नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, लेकिन सोच का तरीका है, एक सोच का तरीका है। क्योंकि हम देखते हैं ना तपोभूमि का प्रोग्राम किस किस कारण से लोग कैंसिल कर देते हैं, देखते हैं, अरे साहब क्या करें साहब, वो ट्रेन कुछ मिली नहीं हमको, अरे भाई 4 महीने का टाइम था, 4 महीने तो सोच ही नहीं पाया कब जाना मैंने, संसार काम तो बड़े पहले से डिसाइड कर लेता है, रिजर्वेशन कराने नहीं मिलेगा, और भक्ति का मार्ग है उसके लिए एक रिजर्वेशन की होश ही नहीं तुझको, तो पहले से करा के रख ले कुछ, अरे इमरजेंसी आ गई तो कैंसिल भी तो हो सकता है, नहीं कराता तो एक हफ्ते पहले सोचता है हाँ अब तो कोई काम नहीं है, नहीं चलो अब करा लेते हैं, फिर कहता है रिजर्वेशन मिला नहीं। तो आपके करने के तरीके ही बताते हैं कि तेरी इंपॉर्टेंस क्या है ईश्वर भक्ति की। सारे काम तेरे निबट जाते हैं नहीं, तब ईश्वर भक्ति की याद आती है, चलो अब सोचते हैं ईश्वर भक्ति के बारे में कि वहां के लिए टाइम निकाल लेते हैं कुछ जो भी मिलेगा 2-4 दिन का। तो ये सारी चीजें सिद्ध करती है मेरे अंदर विवेक नहीं है, जिंदगी की समझ नहीं है मेरे अंदर, भले मैं दुनिया में बड़ा होशियार हूं लेकिन मुझको जिंदगी की समझ नहीं है। अभी सिंपल सा सिद्धांत है, सारी दुनिया जानती है इस बात के लिए, लेकिन निश्चय दुनिया का नहीं है। यदि मेरा भी निश्चय ना हो इस सिद्धांत पर कि जिस समय इस देह की मृत्यु होगी क्या क्या बच जाएगा क्या क्या नष्ट हो जाएगा, सारे शास्त्र इसके बारे में क्लियर दे रहे हैं, या कोई डाउट है इसमें? रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, मां जी की संत अभिलास पढ़ो, संत प्राय ग्रंथ पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, हर जगह सिद्धांत लिखा हुआ है, वेरीफाई कर रहा है कि जिस समय इस देह की मृत्यु होती है जीव अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर में उसकी इंद्रियां मन आ गया जिसमें उसके कर्म फल भी सुरक्षित है, संस्कार भी सुरक्षित है, स्वभाव भी सुरक्षित है, इस संपत्ति को लेकर जीव इस देह का त्याग करता है और ईश्वर नियम के अनुसार जीव को तुरंत ही नई देह प्रदान कर दी जाती है रहने के लिए। संपत्ति इसकी यही रहती है, जो यहां से कमाई करके ले गया संपत्ति इसकी नई देह में वही रहती है। तो मशीन बदल गई, संपत्ति वही है और जीव भी वही है। तो इस सिद्धांत को कितनी बार सुना, लेकिन कभी मैंने मनन किया गहराई से इसके ऊपर कि मुझको जानता कौन है, ये गृहस्थी लोग हैं, संसारी लोग हैं, मुझे जानता है कोई? मेरी मुसीबत का पता है किसी को? खाने को नहीं मिलेगा तो कहेंगे खाने को नहीं मिल रहा, ये मुसीबत में है, ये मैं कहां मुसीबत में फंसा हुआ हूं किसी को पता है पूरी दुनिया में? गुरु जानता है, ईश्वर जानता है, आप जानते हो। तो मैं अपने बारे में क्या इस तरह से कभी सोचता हूं कि अरे संपत्ति मैं कौन सी ले जा रहा हूं यहां से? मैंने गृहस्थी बच्चों को बड़े ढंग से पालन किया था, बड़ी ढंग से कमाई करके खिलाया था, बड़ा अच्छा मकान बना के छोड़ गया, थोड़ा बैंक बैलेंस भी बना दिया, ये संपत्ति इकट्ठी करी मैंने। इस संपत्ति के लिए तो ईश्वर के दरबार में जूते पड़ने वाले हैं तुम्हारे, अर्थात सजा मिलने वाली है। तो ये इसलिए संसार में भेजा गया था, तो ये काम करिए। तू गृहस्थी जीवन के प्रति गंभीर है, ईश्वर के प्रति जो है लापरवाह। जबकि एक बार को लापरवाही गृहस्थ जीवन के प्रति हो जाती है, इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन ईश्वर के प्रति तो लापरवाह जो रहा, जिंदगी का तो उन्हें सर्वनाशी कर दिया। तो मैं जीव हूं, कितने मेरे अच्छे कर्मों का फल जब ड्यू हुआ होगा, तब मुझे ये मनुष्य चोला मिला, ईश्वर ने दिया है मुझे। इस वास्ते दिया है कि मैं इस चोले के साथ इस मन के, इंद्रियों के, देह के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। और मौत के वक्त जब जिस ईश्वर के साथ रहता हूं मैं, मौत के वक्त तो देह खत्म हो जाती है ना आपकी, उस समय तो ईश्वर ही बचा आपके लिए। जो ईश्वर मौत के वक्त भी मेरे सूक्ष्म शरीर को, मुझको सुरक्षित रखता है और नई देह प्रदान करता है, मैं तो नहीं बनाता नई देह अपनी, ईश्वर ही प्रदान करता है ना, क्योंकि सारी कुदरत तो उसके अधीन काम कर रही है। इसीलिए वो ईश्वर आपके संग ही रहता है, आपको नई देह, नए रिसोर्सेज प्रदान करता है। रिसोर्सेज क्या है आपके लिए? गुरु की प्राप्ति, शास्त्रों का की प्राप्ति, ये रिसोर्सेज है आपके लिए। इन रिसोर्सेज का यूज करके मैं फिर अंतर्यामी ईश्वर के पास रहने की कोशिश करता हूं, संसार से किनारा करता हूं, इसमें दिल नहीं लगाता। अपना कर्म करता हूं लेकिन दिल मेरा संसार नहीं लगाता, दिल में अंतर्यामी ईश्वर के साथ लगाता हूं। तो जिसको सिमरन करने की फुर्सत तक नहीं है, संसारी कामों का बहाना बना रहा है, तो विचार करो क्या वो आदमी होश में है, वो जीव होश में है? तो मदहोश होकर जी रहा है, माँ जी कह रहे हैं ये मदहोश होकर जी रहा है। देह का अहंकारी, मैं देह हूं पूरी तरह से, इस भाव के साथ जी रहा है और यही इसका जीवन, गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन सिद्ध कर रहा है इस बात के लिए। तो मेरी समझ ही नहीं है मेरे बारे में, तो क्या खाक प्राप्ति होनी है मुझको? और कब से गुरु बना रखा है मैंने, कब से संत अभ्यास पढ़ रहा हूं, कब से सत्संग सुन रहा हूं, लेकिन मेरा कोई निश्चय बदला आज तक? तो दृढ़ता कहां से आएगी मुझे बताओ? जब समझ ही नहीं है आपको जिंदगी की, मैं कौन हूं ना इसकी समझ, जब इसे देह की मृत्यु होगी क्या मेरे साथ जाएगा ना इसकी समझ, ईश्वर का मेरे जीवन में क्या रोल है ना इसकी समझ। तो मैं पांच विकारों में फंसा रहूंगा, देह के बंधन में फंसा रहूंगा, कौन बचाएगा मुझे? मानव देह का मतलब यह है, ईश्वर ने आपको यह मौका दिया है इस बंधन से मुक्त होने का। मानव देह का मतलब केवल इतना है, देह तो शेर को भी मिलती है, देह तो बिल्ली को भी मिलती है, देह का कोई महत्व थोड़ा है। मानव देह का महत्व इसलिए है कि मानव देह एक मौका है ईश्वर से मिलने का। अब बताइए, जिस पर्पस के लिए ये मानव देह मुझको दी गई है, मैं उस पर्पस को ही भूल जाऊं और गृहस्थ जीवन मेरे लिए मुख्य बन जाए? कहता है ये सब ठीक ठाक हो जाएगा, फिर देखूंगा कितना टाइम बचा, तब सोचूंगा ईश्वर में लगाने के लिए, सोचने का तरीका मेरा ये हो, तो उसका तो अभिशप्त जीवन है, कहां जाना है, नरक में जाना है। आया था निष्काम बनने के लिए, निष्काम बनने के लिए आया था ना, भोगों से मुक्त होने के लिए, लेकिन तेरा जो प्रोग्राम है वो तो भोगों में फंसने का नहीं, कर्म वासना बढ़ाने का है। जो बड़ी जिम्मेदारी से, बड़े शौक से गृहस्थ जीवन का पालन करेगा, उसकी कामनाएं बढ़ेंगी, मोह बढ़ेगा, और क्या होगा, स्वार्थ से संस्कार बढ़ेंगे। तो वो तो अधिकारी इस बात का बना ना कर्मों से कि मानव जन्म उससे छीन लिया जाए। सीधी सी बात है, आपकी करनी साफ बोल रही है कि आपका मानव जीवन छीन लिया जाए आपसे। تو مجھے ہوش کہاں ہے اس بات کا کہ میری کیا دردشا ہونے والی ہے؟ میں تو میری کل بھی ہو سکتی ہے، لیکن میری جو من کی حالت ہے، میرا جو چنتن بتا رہا ہے، یہ میں تو یہ پشو یونی میں چلا جاؤں گا، یہ ہوش ہے اس بات کا؟ تو مانو جنم مجھے دوبارہ ملے، اس کے لیے آپ ستمار پہ چلو گے یا نہیں چلو گے؟ تو یہ ویویک آپ کے اندر بنا ہی نہیں ہوا ہے. ساری سنتا ولاس پڑھو گے تو یہ باتیں آ رہی نہیں آ رہی بار بار جگہ جگہ. جب گرو لکھ کے دے رہا ہے کہ جو ایشور بھکتی کے مارگ پر نہیں چل رہا ہے، سنساری مارگ پر چل رہا ہے، وہ پشو ہے. مانو دیہ ہے اس کی، لیکن ہے وہ پشو. تو جب میں پشو بن کر جی رہا ہوں تو میں پشو یونی کا ادھیکاری بن گیا نہیں بن گیا؟ یا ایشور میرے ساتھ انیائے کرے گا جب اس دیہ کی متی ہوگی تو پشو یہ دیہ دے دے گا مجھے، تو میرے ساتھ انیائے کرے گا وہ؟ وہ کہے گا کہ تم نے بچے بڑے اچھی طرح سے پالے تھے، اس لیے میں تجھے مانو دیہ دے رہا ہوں. تو شاستر نرنے کرے گا کہ تم مانو دیہ کا ادھیکاری ہے یا نہیں ہے. ایشور بھکتی کی تو بات چھوڑ، جو تیرے پاس سمپتی مانو دیہ کی ہے وہ بھی چھن جائے گی، چھننے والی ہے تجھ سے. تیری کرنی تو ایسی ہے. تو الٹیمیٹلی جو شاستر کا گیان ہے وہی تو آپ کا مارگدرشن کرے گا نہیں کرے گا؟ تو اس کے پڑھنے کے پرتی ہم سنسیئر کہاں ہیں؟ اس درشٹی کوڑ کے ساتھ ہم اس کو کہاں پڑھتے ہیں؟ بہانے بنا لیتے ہیں، ارے کیا کریں صاحب، ایسے پھنسے ہوئے ہیں گرہستی میں، گرہستی والے چھوڑتے نہیں. سمجھتے تو سب ہیں ہم، دیکھو کیسے کیسے کہتے ہیں، سمجھتے تو ہم سب ہیں لیکن کیا کریں، کر نہیں پاتے. اے پربھو ایسی کرپا کر دو کہ میں کر پاؤں. اب کیا پربھو کرپا کریں گے اس کے اوپر؟ ساری کرپا تو کر رکھی ہے، جو کہہ رہا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، تو کرپا تو کر رکھی تبھی تو جانتا ہے. اب کرنی تو نے یا پربھو کرے گا تیری جگہ؟ بچوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا وہ پربھو تو پال دے گا، میں تو سمرن کرنے جا رہا ہوں، نہیں کرپا کرنا ان کو پال دینا، نہیں کہے گا کبھی بھی. تو ان کو تو خود پالے گا، ایشور بھکتی پربھو کروا لیں گے. تو پرشارتھ کے لیے گرہستی چھوڑ دی ہم نے، اور کرپا کری ہے ایشور بھکتی چھوڑ دی ہم نے، کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بات کرنے کے طریقے سے نہیں پتا لگتا ہے کہ یہ بہانے بازی کر رہا ہے اور نادان ہے؟ کہاں ڈرتا ہے اس میں؟ تو ایسا لچر پچر جس کی سوچ ہے، تو کیا ایشور بھکتی میں درتا کبھی ہوگی جیون میں اس کے؟ کچھ سخت نرنے لینے ہی پڑتے ہیں. جس نے بھی زندگی میں کچھ کیا بڑا کام، اس نے جیون میں دیکھ لیا سخت نرنے لیے ہیں. آپ پوری دنیا کے ایگزامپل اٹھا کے دیکھ لیجیے. پرمار تو چھوڑو، سوارتھ میں بھی جو بڑے بڑے یودھا ہوئے، بڑے بڑے لوگ جو ہوئے، آپ دیکھیے کتنے سخت نرنے لیے. اب سکندر اپنا دیش چھوڑ کر ہندوستان تک آ گیا، یدھ کرتا کرتا جیتا، تو آرام چھوڑا ہوگا نہیں چھوڑا ہوگا؟ اس نے آرام سے اپنے محل میں تو رہ سکتا تھا وہاں پر، لیکن سارا آرام چھوڑ چھاڑ کے یہاں تک آ گیا. وہ جب یہاں سے واپس ہوا تو اس انوبھو ہوا جیون کا اس کو کہ میں نے کیا کرائی. جب اس کو موت یاد آنے لگی کہ میں مر بھی سکتا ہوں، تب اس کو ہوش آئی، میں نے کرا کیا، ملا کیا مجھے. لیکن سنسار کے لیے بھی تیاگ تو کرنا پڑا اس کو، سنسار کی بھی کمن تمنا پوری کرنے کے لیے کتنا تیاگ کرنا پڑا. تو میں سارے جگت کا مالک جو ایشور ہے اس کو پراپت کرنے چلا ہوں، تیاگ کوئی ہے ہی نہیں. اسی لیے میری پرگتی بھی کوئی نہیں، آپ دیکھو پرگتی بھی کوئی نہیں. بڑا ڈھیلا سا من، ڈھیلی سی بدھی، ڈھیلے سے نرنے لے کر جی رہے ہو آپ. کوئی نیم ہی نہیں آپ کا، نہ سمرن کا کوئی نیم ہے، نہ ستسنگ کا کوئی نیم ہے، نہ سوادھیائے کا کوئی نیم ہے. جب موقع مل گیا کچھ کر لیا آپ نے، تو بتائیے ऐसा ढीला मन आपने, ऐसे ढीले संस्कार जब बना रखे हैं, तो कभी सिमरन का मौका मिल गया, सिमरन करने बैठ भी जाओगे तो मन आपके वश में आएगा समय क्या? तो इसीलिए महाजी ने सख्ती की थी, नियम जहां को दिए थे तो सख्ती की थी। प्रेमी 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटे सायंकाल सिमरन करना लाजमी है। खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना। सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी है। इन 3 सेंटेंसेस में कहीं मैंने गंभीर चिंतन किया क्या? ये गुरु लिखकर क्या दे रहा है? ये गुरु लिखकर क्या दे रहा है? कभी भी मैंने इस पर गंभीर चिंतन करने की कोशिश की? तो रिजल्ट भी वैसे ही होंगे मेरे जिंदगी, मेरी जिंदगी के रिजल्ट भी वैसे ही होंगे। आप यदि इसको ईमानदारी से सोचो, इन 3 सेंटेंस के ऊपर सारी आपकी करनी सामने आ जाएगी कि मैं तो कभी इसके ऊपर प्रति गंभीर ही नहीं रहा। ये तो गुरु ने मिनिमम प्रोग्राम दिया है भैया, अभी तो आगे की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, तो मिनिमम प्रोग्राम पे भी खड़ा नहीं। कितना बिगड़ा जीवन है मेरा सोचो जरा। सांसारिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सोची थी, इतना पैसा तो होना ही चाहिए, संसार का स्टैंडर्ड आजकल ये चल रहा है, ये चीज तो होनी ही चाहिए, इसके बिना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी, मेरा गृहस्थ जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। मैंने तो ये सोचा था ना, मैं उसके प्रति गंभीर था, मैं तो वो चीज बनी हुई आपके जीवन, आप ईश्वर के प्रति गंभीर हो ही कहां? उसके प्रति तो गंभीरता से सोचा ही नहीं कभी आपने। तो इसीलिए गुरु जो वर्ड्स लिख रहा है उस पर गहरा मनन करो भाई, गुरु क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है? क्योंकि गुरु जीव का बंधन समझ रहा है, उसे मानव देह दिखाई नहीं पड़ रही है, गुरु को जीव दिखाई पड़ रहा है, जीव का दुख दिखाई पड़ रहा है, उसकी बेचैनी दिखाई पड़ रही है। और गुरु जानता है कि मैं ईश्वर हूं, इसके बेचैनी का मुक्ति का, बेचैनी से मुक्ति का एक ही रास्ता है कि ये मेरे पास आए, निरंतर मेरी ओर अग्रसर हो ये, निरंतर। तो बताइए ऐसा गुरु जो ईश्वर रूप है वो आपको लिख के दे रहा है तो नहीं मेरे पास आने के लिए क्या करना है, और मैं उसमें टाला मटोली कर रहा हूं, तो वो शिष्य है या संसारी है? वो तो मैं शिष्य बना ही का, शिष्य मैं गुरु का बना ही कब जो मैं उसकी बात स्वीकार करूंगा? मैं तो संसार का चेला हूं, वो मेरी करने से नजर भी आ रहा। तो इसीलिए ये गंभीरता आपके अंदर होनी चाहिए। ये मानव जन्म बहुत कीमती है, इसका एक एक दिन बड़ा कीमती है। ये लापरवाही से व्यतीत करने के लिए नहीं मिला, ये बहानेबाजी करने के लिए नहीं मिला, ये करनी आपने ही करनी है। जब अर्जुन युद्ध जैसा कर्म करके भी ये काम कर सकता है वो, तो मैं साधारण गृहस्थी पालन करने के साथ ये काम नहीं कर सकता क्या? लेकिन अर्जुन ने तो समर्पण कर दिया कृष्ण के आगे कि मैं समझ गया, अब आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। मैं कहां समर्पण कर रहा हूं, जैसा मैं चाहूंगा वैसा करूंगा, समर्पण तो है ही नहीं मेरा। तो समर्पण करना इतना आसान थोड़ा है। तो अर्जुन ने उस समर्पण में अपना कल्याण समझा, इसलिए दुनिया की हर वस्तु त्यागने के लिए तैयार हो गया, दुनिया की हर वस्तु त्यागने, यहां तक कि इतना कीमती शरीर भी त्यागने के लिए तैयार हो गया। अब आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा, मुझको स्मृति प्राप्त हो गई, स्मृति लब्धा, मुझे क्या करना चाहिए था मुझे पता लग गया, मैं करने के लिए तैयार। क्षत्रिय है वो, अपनी जान हाथेली पर घूमता है। तो कृष्ण ने उसको दिला दिया मोक्ष, इतना भयंकर कर्म करने के बाद भी दिला दिया। उसके मुकाबले मेरा क्या कर्म है? मेरा तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा समर्पण कहीं है ही नहीं। समर्पण गृहस्थ जीवन के आगे है, संसारी जीवन के आगे है, भोगों के आगे समर्पण है, वो चीज मिल रही है आपको। तो इसीलिए मैं फिर कहता हूं ये बात कि आप संत अविनाश को गहराई से पढ़ें और गुरु के हर वचन पर टिकें कि गुरु कह क्या रहा करने को, मैं कर रहा हूं क्या, देखें किस चीज को महत्व देना चाहिए था और किस चीज को महत्व दे रहा हूं मैं, जिसके लिए जीवन मिला उसका तो नुकसान ही नुकसान कर जा रहा हूं, और जिससे बचने का आदेश दे रही है संत अविनाश, उसमें मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो मेरा इन्वेस्टमेंट भोगों की प्राप्ति के लिए, मेरा इन्वेस्टमेंट भोग से निवृत्ति के लिए नहीं है। तो इसलिए रिजल्ट मुझे कहां देखने को मिलेंगे, ऐसे व्यक्ति के अंदर फिर ईश्वर भक्ति की दृढ़ता कहां से आएगी बताऊंगे। तो गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार जब तक आप अपने दैनिक जीवन का प्रोग्राम नहीं बनाते, उसके लिए सेक्रीफाइस करना नहीं सीखते, मर्यादा में भोग इकट्ठे करने की कोशिश नहीं करते, मां जी कह रहे प्रेमी तूने केवल जीवन चलाने के लिए बेसिक नीड्स पूरी करनी है, मैं संसार के निकल करके वैसे प्रोग्राम बना रहा हूं अपने लिए भी अपने परिवार के लिए भी, तो भक्ति नहीं हो सकती। फिर भक्ति के लिए सेक्रीफाइस मस्ट है, दृढ़ता जरूरी है, और ये तभी आएगी आपके अंदर जब गुरु के मार्गदर्शन अनुसार आप सोचोगे और उसके मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दोगे जो जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो नंबर दो पर संसार के काम और संसार के भोग आते हैं, आपने उनको नंबर एक पर कर रखा है। तो इसीलिए जब आपका विवेक स्ट्रांग होगा, आपके अंदर सेक्रीफाइस की ताकत भी आएगी, और सेक्रीफाइस जब करोगे फिर भक्ति की दृढ़ता भी होगी। ओम ब्रह्म सत्यम।